चौथा हिस्सा सबक नंबर 14 जमात का बयान।
पंच वक्ता फर्ज नमाजों में जमात के साथ नमाज पढ़ना कैसा है?
हर आकिल बालिग मर्द पर जिसे मस्जिद तक जाने में मशक्कत ना हो जमात से नमाज पढ़ना वाजिब है। बिला उज़्र शरई एक बार भी छोड़ने वाला फासिक है। जिसकी गवाही ना मकबूल उसको सख्त सजा दी जाए। अगर पड़ोसी रहे तो वो भी गुनहगार हुए।
जुमा ईदेन और तरावी वितर में जमात कैसी है?
जुमा और ईदेन में जमात शर्त है और तरावी में सुन्नत किफाया कि मोहल्ले के सब लोगों ने तर्क की तो सब ने बुरा किया और अगर कुछ लोगों ने कायम कर ली तो बाकियों के सर से जमात साकित हो गई और रमजान के वितर में मुस्तहिब है और सूरज गहन में सुन्नत है।
औरतों पर नमाज बाजमात वाजिब है या नहीं?
औरतों को किसी नमाज में जमात की हाजिरी जायज नहीं। दिन की नमाज हो या रात की, जुमा हो या ईदेन, ख्वाह वो जवान हो या बुढ़िया, यूं ही औरतों को वाज की यानी तकरीरों की मजलिस में भी जाना जायज नहीं। लेकिन अब जबकि औरतें बाजारों वगैरह में घूमती फिरती हैं, बाज़ उलमा ने इसके जायज होने का फतवा दिया है।
वो क्या बातें हैं जिनकी वजह से जमात की हाजिरी माफ है?
सख्त बारिश और सख्त कीचड़ का हायल होना, सख्त सर्दी, सख्त तारीकी, आंधी, माल या खाने के तलफ हो जाने का अंदेशा, कर्ज ख्वाह का खौफ जबकि आदमी तंगदस्त हो, जालिम का खौफ, पाखाना, पेशाब और रियाह की शदीद हाजत, खाना हाजिर है और नफ्स को इसकी ख्वाहिश, काफिले चले जाने का अंदेशा, मरीज की तीमारदारी कि उसको तकलीफ होगी और घबराएगा, ये सब तरके जमात के लिए उज़र हैं।
वो लोग कौन हैं जिन्हें जमात में ना आने की इजाज़त है?
मरीज जिसे मस्जिद तक जाने में मशक्कत हो, अपाहिज जिसका पांव कट गया हो, जिस पर फालिज गिरा हो, इतना बूढ़ा कि मस्जिद तक जाने से आजीज हो, नाबीना अगरचे उसको हाथ पकड़कर मस्जिद तक पहुंचाने वाला मौजूद हो, और नाबालिग के जिम्मे जमात की हाजिरी लाजिम नहीं है।
जमात से नमाज पढ़ने में क्या क्या खूबियाँ और फायदे हैं?
हदीस शरीफ में है कि नमाज ब जमात तनहा नमाज से 27 दर्जे बढ़कर है, और एक हदीस में कि जो अल्लाह ताला के लिए 40 दिन बा जमात नमाज पढ़े और तकबीर उला पाए उसके लिए दो आज़ादियाँ लिख दी जाएंगी, एक दोजख से और एक निफाक से। इन अजीम फायदों के अलावा जमात में और भी बहुत सी खूबियाँ हैं, मसलन मुसलमानों में इत्तेहाद व यकजहती, ना वाकिफों का मसाइल इल्मी से वाकिफ होना, हमसायों और अहले मोहल्ला की हालत से आगाह रहना, इबादत गुजारों के फैज व बरकत और मुलाकात से बहरावर होना, उनके तुफेल अपनी नमाज का मकबूल होना, हाजतमंदों और गरीबों का हाल मालूम होना, दूसरों को देखकर इबादत का जौक और शौक और खुदा की तरफ रगबत पैदा होना, दुनिया की आलूदगियों और बिखेड़ियों से इतनी देर तक महफूज रहना वगैरह।
जमात में किस तरह खड़ा होना चाहिए?
मुख्तदी सफ बनाकर मिलकर खड़े हों के बीच में कुशादगी ना रह जाए और सबके मुंडे बराबर हों, और अकेला मुख्तदी इमाम के बराबर दाहिनी जानिब इस तरह खड़ा हो कि उसका कदम इमाम से आगे ना हो, बाएं तरफ या पीछे खड़ा होना मकरूह है। और सफों की तरतीब ये है कि पहले मर्दों की सफ हो, फिर बच्चों की, और अगर बच्चा तनहा हो तो मर्दों की सफ में दाखिल हो जाए, और इमाम को चाहिए कि मुख्तदियों के आगे वस्त में खड़ा हो, अगर दाएं या बाएं जानिब खड़ा हुआ तो खिलाफ सुन्नत किया, और इमाम के पीछे मुकाबले में वो शख्स खड़ा हो जो जमात में सबसे अफजल है।
पहली सफ में जगह होते हुए पीछे खड़े होना कैसा है?
सफ में जगह होते हुए मुख्तदी को सफ के पीछे खड़ा होना मकरूह है, और जबकि पहली सफ में जगह हो और पिछली सफ भर गई हो तो उसको चीर कर जाए और खाली जगह में खड़ा हो। इसके लिए हदीस में फरमाया कि इसकी मगफिरत हो जाएगी, मगर ये हुक्म वहाँ है जहाँ फितना और फसाद का एहतमाल ना हो।
वो कौन सी ऐसी चीज है अगर इमाम ना करे तो मुक्तदी भी ना करे?
पांच चीजें वो हैं कि इमाम छोड़ दे तो मुक्तदी भी ना करे और इमाम का साथ दे। पहला ईदेन की तकबीर, दूसरा कायदे उला, तीसरा सजदे तिलावत, चौथा सजदे सौ, पांचवा कुनूत जबकि रुकू फौत होने का अंदेशा हो, वरना कुनूत पढ़कर रुकू करे और इमाम ने अगर कायदे उला ना किया और अभी सीधा खड़ा ना हुआ तो मुक्तदी अभी ना उठे बल्कि उसे बताए ताकि वापस आ जाए, और अगर सीधा खड़ा हो गया تو نہ بتائے کہ نماز جاتی رہے گی بلکہ خود بھی کھڑا ہو جائے۔
وہ کیا کیا چیزیں ہیں اگر امام کرے تو مقتدی نہ کرے؟
چار چیزیں وہ ہیں کہ اگر امام کرے تو مقتدی اس کا ساتھ نہ دے۔ پہلا، نماز میں کوئی رکن زائد ادا کرے، یعنی دو رکوع یا دو سے زائد سجدے کرے۔ دوسرا، یا عیدین کی تکبیرات 16 سے زائد کہے۔ تیسرا، یا نماز جنازہ میں 5 تکبیر کہے۔ چوتھا، یا قائد آخرہ کے بعد 5ویں رکعت بھول کر کھڑا ہو جائے۔ پھر اس صورت میں اگر 5ویں کے سجدے سے پہلے لوٹ آیا، مقتدی اس کا ساتھ دے اور اس کے ساتھ سجدے سہو کر کے سلام پھیر دے، اور اگر 5ویں رکعت کا سجدہ کیا تو سب کی نماز فاسد ہو گئی۔
وہ کیا چیزیں ہیں اگر امام چھوڑ دے تو مقتدی کرے؟
پہلا ہے تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھانا، دوسرا ثنا پڑھنا جبکہ امام فاتحہ میں ہو اور آہستہ پڑھتا ہو، تکبیرات انتقال یعنی رکوع و سجود کے وقت کی تکبیریں، چوتھا رکوع و سجود کی تسبیحات، پانچواں تسمیع یعنی سمع اللہ لمن حمدہ کہنا، چھٹا تشہد پڑھنا، ساتواں سلام پھیرنا، آٹھواں تکبیرات تشریق۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر امام نہ کرے تو مقتدی اس کی پیروی نہ کرے بلکہ بجا لائے۔
فرض نماز تنہا ادا کرنے میں اگر جماعت قائم ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟
تنہا فرض نماز ابھی شروع ہی کی تھی یا فجر یا مغرب کی نماز ایک رکعت پڑھ چکا تھا کہ وہیں جماعت شروع ہو گئی، تو فوراً نماز توڑ کر جماعت میں شامل ہو جائے۔ البتہ اگر دوسری رکعت کا سجدہ کر لیا تو اب ان دو نمازوں یعنی فجر و مغرب میں توڑنے کی اجازت نہیں، نماز پوری کر لے۔ اور 4 رکعت والی نماز میں واجب ہے کہ ایک اور پڑھے اور توڑ دے، اور وہ پڑھ لی ہے تو تشہد پڑھ کر سلام پھیر دے کہ یہ 2 رکعتیں نفل ہو جائیں۔ البتہ اگر 3 پڑھ لی ہیں تو واجب ہے کہ نہ توڑے ورنہ گنہگار ہوگا، بلکہ پوری کر کے نفل کی نیت سے جماعت میں شامل ہو، جماعت کا ثواب پا لے گا، مگر عصر میں شامل نہیں ہو سکتا کہ عصر کے بعد نفل جائز نہیں۔
سنت و نفل پڑھتے وقت اگر جماعت شروع ہو جائے تو کیا حکم ہے؟
نفل شروع کر لیے تھے تو قطع نہ کرے، بلکہ 2 رکعت پوری کرے اور تیسری پڑھتا ہو تو 4 پوری کر لے، اور جمعہ اور زہر کی سنتیں پڑھنے میں صبح یا جماعت شروع ہوئی تو 4 پوری کر لے۔
حاجت کے وقت نماز توڑنے کا کیا طریقہ ہے؟
نماز توڑنا بغیر عذر ہو تو حرام ہے، اور ضرورتا نماز توڑنے کے لیے بیٹھنے کی حاجت نہیں، کھڑا کھڑا ایک طرف سلام پھیر کر توڑ دیں۔